ओम शांति। 18 दिसंबर 2023 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। आज की मुरली का सार मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे आत्मा और परमात्मा का मिलन ही सच्चा सच्चा संगम है। आत्मा और परमात्मा का मिलन ही सच्चा सच्चा संगम है अथवा कुंभ है। इसी मिलन से तुम पावन बनते हो, यादगार में फिर वे मेला मनाते हैं। ये है सच्चा सच्चा संगम आत्माओं और परमात्मा का, ठीक है। परंतु वो नहीं जानते कि क्या है ये संगम। वो समझते हैं यहां तो निकलती हैं ज्ञान सागर से ज्ञान नदियां, यहां ज्ञान सागर से क्या निकलती हैं, परंतु उन्होंने देखा कि वहां नदियां जाकर के सागर में मिलती हैं, तो उसका नाम रख दिया गंगा सागर। गंगा जाकर जहां जाकर सागर में मिलती है, तो दोनों में कितना बड़ा अंतर है। कहां पानी की नदी जाकर सागर से मिलती है उसको संगम बना दिया, जबकि संगम किसका था कि ज्ञान नदियां जहां गंगा ज्ञान सागर से निकलती और प्रयाग में दो नदियां मिलती हैं आपस में आकर, उसका नाम उन्होंने संगम रख दिया। इस मिलन से तुम पावन बनते हो, यादगार में फिर वे मेला मनाते हैं। प्रश्न, तुम बच्चों में किस बात की बहुत बहुत सियानप चाहिए, तुम बच्चों में किस बात की बहुत बहुत सियानप चाहिए। उत्तर, ज्ञान की। जो नाजुक बातें हैं उन्हें समझाने की बहुत सियानप चाहिए। ज्ञान की नाजुक बातें बहुत, क्योंकि जिससे थोड़ी सी बात समझ में ना आए तो अर्थ भी बदल जाए, उन्हें समझाने की बहुत सियानप चाहिए। युक्ति से ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग को सिद्ध करना है। ये अंतर आपने सिद्ध करना है कि ये ज्ञान मार्ग है और ये भक्ति मार्ग है, युक्ति से, ताकि किसी को बुरा नहीं लगे। ऐसे समझाना है जैसे चूहा फूंक भी देता है और काट भी लेता है। क्या समझ में आई होगा, आपने काटना भी है फूंक भी मारनी है। इतना प्यार से बताना है ताकि उनको समझ में भी आ जाए और बुरा भी ना लगे। तो सर्विस की युक्तियां रचनी है। कुंभ मेले पर प्रदर्शनी लगाकर, कुंभ मेले पर प्रदर्शनी लगाकर अनेक आत्माओं का कल्याण करना है। पतित से पावन होने की युक्ति बतानी है। पतित से पावन होने की युक्ति बतानी है। गीत, इस पाप की दुनिया से दूर कहीं दूर ले चल, कौन कहता होगा, जिस पर पाप या जुल्म हुआ। क्यों हुआ उसके ऊपर पाप या जुल्म, उसने भी कर रखा, کیونکہ پاپ کی دنیا میں جانے کے بعد دکھ تو ہوگا ہی ہوگا. تو اب وہ جب دکھ کی فیلنگ کرتا ہے تب اس کو آتا ہے کہ اب اس دنیا سے ہی دور لے جاؤ, اس دنیا سے مکتی مل جائے, جان چھوٹ جائے, جنم مرن کے چکر میں آنا ہی نہ پڑے. اوم شانتی. باپ بیٹھ بچوں کو سمجھاتے ہیں, باپ بیٹھ بچوں کو سمجھاتے ہیں پاپ کی دنیا کو. کلی یوگی پتت بھرشٹاچاری دنیا کہا جاتا ہے, اور پھر پنیہ کی دنیا کو ست یوگی پاون شرشٹاچاری دنیا کہا جاتا ہے. پرم آتما ہی آ کر پنیہ آتما, پوتر آتما اتوا پنیہ کی دنیا بناتے ہیں. منشی پکارتے ہیں, منشی پکارتے ہیں پتت پاون باپ کو, کیونکہ خود پاون نہیں ہے, خود پاون نہیں ہے. اگر سمجھتے پتت پاونی گنگا ہے, پتت پاونی گنگا ہے وا تریوینی ہے, پھر پکارتے کیوں ہیں؟ یدی گنگا تریوینی یا تین ندیاں تین پانی مل رہے ہیں ان کو آپ کہتے ہو کہ وہ پتت پاون ہے, تو پھر وہاں کھڑے ہو کر اس پتت پاون پرماتما کو کیوں پکارتے ہو, کیوں کہتے ہو پتت پاون سیتا رام؟ سیتا کسے کہتے ہیں؟ بھکتیوں کو, جو بھکتی کرنے والے ہیں, اور رام کہتے ہیں پرماتما کو. اب وہ نہیں جانتے تو ان کا کام ہے. پتت پاون آؤ, گنگا یا تریوینی تو ہے ہی, ان کے ہوتے ہوئے بھی پکارتے رہتے ہیں, بدھی پھر بھی پرماتما کی طرف جاتی ہے, بدھی پھر بھی پرماتما کی طرف جاتی ہے. پرم پتا پرماتما جو گیان کا ساگر ہے ان کو آنا ہے, ان کو آنا ہے. صرف آتما نہیں لیکن پوتر جیو آتما کہا جائے گا. جب پاون بنیں گے تو صرف پوتر آتما نہیں کہیں گے, پوتر جیو آتما کہا جائے گا, کیونکہ آتما پوتر ہوگی تو جیو بھی پھر کیا ملے گا؟ پوتر ملے گا. دنیا والے اس انتر کو نہیں جانتے, وہ جیو کو آتما, آتما کو جیو کہہ دیتے. اب اجانتا وش جو کچھ بھی بول رہے ہیں پرنتو وہ جیو کہے آتما کو ہی رہے نا, وہ جیو پھر شریر کو نہیں کہتے, پرنتو دوسری طرف پھر جیو جو ہے وہ شریر کو کہنے والے ارتھ بدل جاتا ہے, ارتھ بدل جاتا ہے. ابھی پاون جیو آتما تو کوئی ہے نہیں, پاون جیو آتما تو کوئی ہے نہیں, پتت پاون باپ آتے ہیں تب, آتے ہی تب ہیں جب ست یوگی پاون دنیا کی ستھاپنا کرنی ہے اور کل یوگی دنیا کا وناش کرنا ہے. ضرور سنگم یوگ پر ہی آئیں گے, سنگم کو کمبھ بھی کہتے ہیں, سنگم کو کیا کہتے ہیں؟ کمبھ بھی کہتے ہیں. تریوینی کا سنگم ہے, اس کا نام رکھ دیا ہے کمبھ, اس کا نام کیا رکھ دیا؟ کمبھ. کہتے ہیں تین ندیاں آپس میں ملتی ہیں, واستو میں ہیں کتنی ندیاں ہیں؟ کسی نے دیکھا ہے؟
دیکھا.
کتنی ندیاں ہیں؟
ندیاں دو ہی سمجھ میں آتی,
دو ہی آتی. بابا بھی کہہ رہے ہیں ندیاں ہیں دو واسطو میں, تیسری ندی گپت کہہ دیتے ہیں. اب کوئی کہتے رہو بھائی, بھائی وہاں جا کے دیکھیں گے نا, تو دو ہی ندیاں ہیں کہنے. سرسوتی کہاں ہے؟ بولے جی سرسوتی گپت ہے. اچھا جی, تیسری ندی کو گپت کہہ دیتے ہیں تو کیا اس کمبھ کے میلے میں پتت سے پاون ہوں گے؟ ہم وہاں جا کے اسنان کر کے آئے, دنیا جا کے وہاں اسنان کر کے آتی, کوئی پاون بنا؟ پتت پاون تو ضرور آنا ہے. جان کا ساگر وے ہے پتت, دنیا کو پاون بنانا, کلیوگ کو ستیوگ بنانا, یہ تو پرم پتا پرماتما کا ہی کام ہے, نہ کہ منشیوں کا. یہ تو سب بلائنڈ فیتھ ہے. اب اندھوں کی لاٹھی, اندھوں کو لاٹھی چاہیے. تم اب لاٹھی بنے ہو نمبر وار پرشارتھ انوسار. لاٹھیاں بھی قسم قسم کی ہوتی ہیں, کوئی لاٹھی 100 روپے کی اور کوئی 2 روپے کی بھی ملتی ہے. یہاں بھی سب نمبر وار ہیں, کوئی تو بہت سروسیبل ہیں. جب بیمار ہوتے ہیں تب سرجن کو بلانا پڑتا ہے. اب یہ ہے پتت دنیا, تم پاون بن رہے ہو. کہا جاتا ہے آتما پرماتما الگ رہے بہوکال, سندر میلا کر دیا جب ست گرو ملا. پھر جب پرم پتا پرماتما انیک آتماؤں کے بیچ آتے ہیں تو اس کو کہا جاتا ہے سنگم کا کمبھ. سنگم کا کمبھ منشی کمبھ کے میلے میں بہت دان کرتے ہیں, وہ کمائی ہوگی سادھو سنتوں کو اور گورنمنٹ کو. یہاں تم کو تن من دھن سہت سب کچھ دان کرنا ہے. پھر کمائی کس کی ہوگی؟ جو دان کرے گا اس کی. وہاں کمائی ہوگی گورنمنٹ کی, وہاں کمائی ہوگی اس علاقے میں رہنے والے لوگوں کی جو وہاں آ کر اپنا ویاپار کریں گے. اور یہاں کمائی کس کی ہوگی؟ جو دان کریں گے, جو دیں گے ان کو ہی تو کمائی ہوگی. پتت پاون باپ کو وہ پھر تم کو بھوشیہ میں سورگ کا مالک بنا دیتے ہیں. اب تم دیتے ہو پتت پاون باپ کو اور وہ پھر سورگ میں آپ کو سورگ کا مالک بنا دے گا. وہ نام لیتے ہیں تریوینی کا اور دان دیتے ہیں سادھو سنتوں مہاتماؤں کو. واستو میں سنگم اس کو کہیں گے جہاں سب ندیاں آ کر ساگر میں ملیں. وہاں ساگر تو ہے نہیں, وہاں ساگر تو ہے ہی نہیں, یہ تو ندیاں آپس میں ملتی ہیں. یہ تو ندیاں آپس میں ملتی ہیں. ندیاں اور ساگر کے ملن کو ہی سچا میلا کہا جاتا ہے. لیکن یہ بھی ڈراما میں نوند ہے, اس میں گورنمنٹ کو بھی ریل موٹر گاڑی زمین آدی سے بہت کمائی ہوتی ہے. تو یہ کمائی کا میلا لگتا ہے, یہ کمائی کا میلا لگتا ہے. ان باتوں کو تم بچے جج کر سکتے ہو کیونکہ تم ہو ایشوریہ مت پر. تو کمبھ کے میلے کا ارتھ نکالنا چاہیے. بابا ایسے, انگریزی میں ایسے کہتے ہیں, ہندی میں نبندھ کہتے ہیں. یہ نبندھ دیتے ہیں, نبندھ مطلب निबंध का मतलब होता है नियम अनुसार शब्दों को इस प्रकार से बांधना, इस प्रकार से लिखना जो सारी बात समझ में आ जाए, कोई बात रह ना जाए। निबंध का ये नियम है कि किसी भी चीज पर निबंध लिख,
किसी भी के पास लिख सकते हैं, नाम पर, पशु पर,
हाँ लिख सकते हैं, परंतु जिस पॉइंट पर आप लिख रहे हो उसके बारे में पूरी जानकारी उसके अंदर आ जाए, ये नहीं कि रह जाए।
सट्टा नहीं मारना,
सट्टा नहीं मारना और छोड़ना नहीं, मेन बात है छोड़ना नहीं। सट्टा मारना, फालतू लिखना, जो है ही नहीं उसमें लिखे जा रहे हो और जो है वो आप लिख नहीं रहे हो, दोनों बातों को उसमें ध्यान देना है, उसका पूरा का पूरा परिचय उस विषय पर उसको मिलना चाहिए। तो ऐसा पूरा का पूरा विषय लिखो ताकि सारी बातें एक साथ सबको समझ में आ जाए। जो सेंसिबल बच्चे हैं उनको उठाना चाहिए, उनको सोने नहीं देना चाहिए, उनको उठाना चाहिए। नंबर वन सबसे सेंसिबल तो है, कौन है सबसे सेंसिबल? नंबर वन मम्मा। फिर दूसरा है संजय जगदीश भाई, जिसको फिर बांटने के लिए पर्चे बनाने पड़े। ये तो उन सबसे ऊपर हो गया ना। पतित पावन तो सर्व का सदगति दाता, क्योंकि ये तो सर्विस करने जा नहीं सकता, बाबा कहते ये जाएगा तो अश्य बाबा कहते मेरे को भी जाना पड़ेगा गली गली में जाके, इसलिए ये नहीं जा सकता, तुम बच्चे जाओ। पतित पावन तो सर्व का सदगति दाता एक शिव बाबा है, त्रिवेणी को तो सदगति दाता नहीं कहेंगे, ये नदियां तो हैं ही आने की बात नहीं। गाते हैं पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। तो ये पर्चे निकालने चाहिए बहनों भाइयों, क्यों क्या पतित पावन ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा है या यह नदियां, या यह नदियां, ये तो सदैव है। परमात्मा को तो पुकारा जाता है आने के लिए। वास्तव में पतित पावन तो एक परमात्मा है, आत्माएं और परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला, वही सतगुरु आकर सबको सदगति दे वापस ले जाते। ज्ञान स्नान तो वास्तव में परम पिता परमात्मा से करना चाहिए। पावन दुनिया की स्थापना परम पिता परमात्मा कराते हैं, तुम उसे जानते नहीं हो। भारत जब श्रेष्ठाचारी था तब उसमें देही अभिमानी देवताएं रहते थे, उसे शिवालय कहा जाता है। अब कुंभ पर जाकर बच्चों को प्रदर्शनी लगानी चाहिए, समझाने के लिए समझाना है पतित पावन एक बाप है। वे कहते हैं मैं आता ही तब हूं जब पतित से पावन बनाना होता है, तो प्रतिज्ञा करनी पड़े, तो प्रतिज्ञा करनी पड़े। रक्षाबंधन भगवान से तैलुक रखता है। रक्षाबंधन किससे संबंध रखता है? और हमने किसके साथ रख दिया? बहनों से। दुनिया वाले ने रक्षाबंधन का संबंध बहनों से कर दिया, वास्तव में रक्षाबंधन का संबंध किसके साथ है? परमात्मा से। पहली पहली राखी कौन आके बांधता है? शिव बाबा आकर बांध, किसको बांधते हैं? पतितों को। सबसे पहला पतित कौन? दादा लेखराज, कृष्ण की आत्मा, उसको पावन बनाने के लिए पहली पहली राखी उसको बांधते हैं, फिर जो आता जाता है सबको राखी बांधते जाते। धागा नहीं बांधता शिव बाबा, वो पवित्रता की सीधी प्रतिज्ञा कराते, स्वयं की रक्षा करने की विधि समझाते, जो दुनिया में कोई दुनिया में सिखा नहीं सकता। ना कि साधु संतों से, प्रतिज्ञा परमपिता परमात्मा से की जाती है, ना कि पानी की नदी त्रिवेणी से, संगम से भी कोई प्रतिज्ञा नहीं की जाती। अच्छा, आज हम तेरे अंदर स्नान करके जा रहे हैं, आज के बाद हम पवित्र रहेंगे, कोई प्रतिज्ञा करके आता है पवित्र रहेंगे? नहीं, वो कहते हम नहा लिए पवित्र हो गए, अब क्या पवित्र रहेंगे, क्या कहना, पवित्रता का मतलब ही नहीं जानते। ए बाबा, हम आपकी श्रीमत से पावन बनने के लिए प्रतिज्ञा करते हैं। बाप भी कहते हैं, मैं तुमको पावन दुनिया का मालिक बनाऊंगा। ये है बाबा के इशारे, ये हैं बाबा के इशारे। इसमें सर्विस करने वाले बहुत तीखे चाहिए, चित्र भी और बनाने पड़े, इसके लिए अच्छा मंडप लेना पड़े। तुम्हारे दुश्मन भी बहुत निकलेंगे, कोई समय आग भी लगाने में देरी नहीं करेंगे। किसको झगड़ा करना होता है तो क्या करता है, पहले गाली देनी पड़े, कुछ ना कुछ ऐसा बोलेगा जिससे उसको दुख हो और वो फिर अपना जहर निकाले, फिर तो झगड़ा शुरू हो। तो गाली देने लग पड़ते हैं, तुमको तो निरहंकारी बनना है, साइलेंस में रहना पड़े। ब्रह्मा कुमारियां मशहूर तो हो गई हैं, पर्चे आदि जरूर बांटते हैं, कुंभ के मेले का खास महत्व रखते हैं, वास्तव में महत्व अब भी का है। ये भी ड्रामा का खेल है, ये भी ड्रामा का। वहां से भी कोई का कल्याण हो सकता है, परंतु मेहनत लगती है, परंतु मेहनत लगती है। कांटों को फूल बनाने में मेहनत लगती है, कुंभ के मेले में प्रदर्शनी करने में भी हिम्मत चाहिए, जान पहचान चाहिए, जो कोई विघ्न ना पड़े। तुमको सिद्ध करना है कि पतित पावन कौन है, पतित पावन कौन है। मनुष्य पावन दुनिया स्वर्ग का को याद भी करते हैं, कोई मरता है तो कहते कहेंगे फलाना स्वर्गवासी हुआ, वहां तो बहुत माल ठाल होते हैं। कहां, स्वर्ग में, वहां से फिर यहां बुलाकर क्यों खिलाते हो नर्क का भोजन, भी वो स्वर्ग में गया, वह माल ठाल खा रहा है, अब उसको तुम प्यार कर रहे हो, बुला रहे हो, आ जाओ आ जाओ खा ले भाई, तो 36 प्रकार का भोजन खा रहा है कर्म अनुसार। यदि उसने कर्म किए हैं गंदे तो वो सड़क पर चौराहे पर भी तो जन्म लेगा, गरीब के घर भी तो जन्म लेगा, वहां जैसा कर्म किया होगा वैसा मिलेगा। अच्छे कर्म किए होंगे अच्छे परिवार में जाके जन्म लेगा, वहां जैसा होगा वैसा मिल जाएगा, जैसा कर्म किया होगा। वहां से फिर यहां बुलाकर खिलाते क्यों हो भाई, उसने आके खाना नहीं, उसका शरीर वहां, आत्मा वहां, यहाँ आके क्या खाएगी। ज्यादा ज्यादा किसी ब्राह्मण में वो आत्मा आ भी गई तो ब्राह्मण के पेट में सारा खाना जाना है। तो हम श्रीनाथ के मंदिर में देखेंगे कितने माल बनते हैं। अब श्रीनाथपुरी और जगन्नाथपुरी वास्तव में है एक ही बात, परंतु वहां श्रीनाथ द्वारे में देखेंगे तो बहुत वैभव बनते। और जगन्नाथपुरी में फीके चावल का भोग लगता है, घी आदि कुछ नहीं पड़ता है, सीधे चावल पानी में उबाले, कड़ी बनाई और ये लोग खाओ। ये फर्क बताते हैं, गोरा है तो ऐसे माल और सांवरा है तो ये सूखा चावल, परंतु दोनों जगह मूर्ति काली है। जगन्नाथपुरी में भी काली मूर्ति है और श्रीनाथ द्वारे में भी काली कृष्ण की मूर्ति। राज बड़ा अच्छा है, ये बाप बैठ समझाते हैं, श्रीनाथ द्वारे में इतना भोग लगाते हैं तो फिर पुजारी लोग दुकान में बेचते भी हैं, उन्हों की कमाई का आधार भी उस पर है, मिलता मुफ्त में है, फिर कमाते हैं तो देखो कितनी अंधश्रद्धा की बातें हैं। मतलब वो मुफ्त में लेते हैं दुनिया से, भोग लगाने के लिए इसने दिया, फिर उसको पैसे से देते हैं, तो देखो कितनी अंधश्रद्धा की बातें हैं। ये है भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, सदगति मार्ग है। गंगा स्नान से थोड़े ही सदगति होती है, बड़ा युक्ति से समझाना है। जैसे चूहा फूंक देकर काटता है, बड़ी ही सहनप चाहिए समझने और फिर समझाने की। कितनी नाजुक बातें हैं। मनुष्य कहते हैं कि परम पिता परमात्मा तुम्हारी गत मत तुम ही, अब इसका अर्थ तो समझते नहीं। तुम्हारी श्री मत से जो सदगति मिलती है वे तुम ही कर सकते हो और कोई कर ना। सर्व का सदगति दाता एक है, सर्व अक्षर जरूर निकल डालना है। समझाया बहुत जाता है परंतु समझने वाले तो बहुत थोड़े निकलते हैं। प्रजा तो बहुत बनती रहती है, प्रजा तो बहुत बनती रहती है। मनुष्य खुदा के नाम पर बहुत दान पुण्य करते हैं तो एक जन्म के लिए फल मिल जाता है, यहां तो 21 जन्मों के लिए मिलता है, यहां तो 21 जन्मों के लिए मिलता है। ईश्वर अर्थ दान करने से ताकत मिलती है, ईश्वर अर्थ दान करेंगे तो क्या मिलेगी, ताकत मिलेगी। ये ईश्वर को जानते ही नहीं तो ताकत ही नहीं रही है। हिंदुओं के गुरु गोसाई तो ढेर हैं, क्रिश्चियन को देखेंगे तो एक है। एक का कितना रिगार्ड है, रिलीजन इज माइट। कहा जाता है अभी तुमने रिलीजन को समझा है तो कितनी ताकत मिलती है। बाबा कहते हैं बच्चे सबको ये वशीकरण मंत्र दो। बच्चों को बाप कहते हैं तुम जहां से आए हो उसे याद करो तो अंतमति सोगति हो जाएगी। बाप को याद करने से ही पावन बन सकते हो। पाप दग्ध होंगे। पाप बाप और वर्षे को याद करना है जिससे सारा चक्र बुद्धि में आ जाता है। सारा चक्र बुद्धि में आ जाता है। गृहस्थ व्यवहार में रहते देह के सर्व संबंधों से बुद्धि निकाल बाप के साथ जोड़ने का पुरुषार्थ करो। बाप के साथ जोड़ने का पुरुषार्थ करो जो फिर अंत समय भी वही याद पड़े। फिर अंत समय वही याद पड़े और कोई को याद की याद पड़ी और कोई की याद पड़ी तो सजा खानी पड़ेगी। क्या मतलब है इसका? मतलब किसी और का कहना माना
तो
सजा खानी पड़ेगी। कहना मानना है याद का अर्थ ना। सजा खानी पड़ेगी और पद भी कम हो जाएगा तो वास्तव में कुंभ कल्प के संगम को कहा जाता है जब आत्माएं और परमात्मा मिलते हैं। परमात्मा ही आकर राजयोग सिखाते हैं। वो पुनर्जन्म रहित परंतु बच्चे भी समझते नहीं श्रीमत पर चलते नहीं तो बेड़ा पार कैसे हो? कैसे हो? बेड़ा पार होना माना राजाई पद पाना। श्रीमत से ही राजाई मिलती है। श्रीमत पर नहीं चलते तो आखरीन खत्म हो जाते। सजनिया साथ में वे चलेंगी। सजनिया साथ में शिव बाबा के वो चलेंगी जिनका दीपक जगा हुआ, जिनके दीवे बुझ गए हैं, जिनके दीवे बुझ गए होंगे वो साथ में थोड़े ही चले। अनन्य बच्चे ही चलेंगे बाकी तो नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार क्या करेंगे। पवित्र बनेंगे। पवित्र तो सब बनेंगे परंतु नंबर वार तो बनेंगे ना। सब आत्माएं भी एक जैसी ताकत वाली नहीं हो सकती। हर एक आत्मा का पार्ट अपना अपना है। एक जैसा पद नहीं मिल सकता। अंत में सबका पार्ट क्लियर हो जाएगा। अंत में सबका पार्ट क्लियर हो जाएगा। झाड़ कितना बड़ा है मनुष्य कितने मनुष्य हैं। झाड़ कितना बड़ा है कितने मनुष्य हैं। मुख्य तो जो बड़े बड़े डाल डालियां हैं वे देखने में आएंगे। मुख्य है फाउंडेशन बाकी तो बाद में आते। उनमें ताकत कम होती है। स्वर्ग में सब भी नहीं आ सकते। भारत में ताकत कम होती है। भारत ही हैवन था। ऐसे नहीं कि भारत के बदले जापान खंड हैवन हो जाएगा। ऐसे हो नहीं सकता। अच्छा मीठे मीठे बाप दादा व मात पिता के लाडले सिक्की लदे ज्ञान सितारे बच्चों को याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। रात्रि क्लास है 24 अप्रैल 1968 की। बच्चों को समझाया गया है और धर्म स्थापक कोई सभी का कल्याण नहीं कर सकते, कोई भी धर्म स्थापक सबका कल्याण नहीं कर सकते। वो आते हैं, सभी को ले आते हैं, हमारा कल्याण नहीं हो सकता। जो लिबरेट वे आते हैं, सभी को ले जाते हैं, जो लिबरेट कर गाइड करते हैं उनका ही गायन है। वो भारत में ही आते हैं तो भारत सभी से ऊंच देश ठहरा। भारत सबसे क्या ठहरा? ऊंच देश ठहरा। भारत की बहुत महिमा करनी है, बाप ही आकर सर्व की सदगति करते हैं, तब ही शांति होती है। विश्व में शांति थी, सृष्टि के आदि में स्वर्ग में एक धर्म था, अभी अनेक धर्म है। बाप ही आकर शांति स्थापन करते हैं, कल्प पहले मिसल करते हैं। तुम बच्चों को ज्ञान मिला है तो विचार सागर मंथन चलता है, और तो कोई का चलता ही
नहीं।
यहाँ भी तुम समझते हो, देह अभिमान के कारण देह को ही पूजते हो, देह को ही पूजते हो। आत्मा पुनर्जन्म तो जरूर यहां ही लेगी ना। अभी तुम समझते हो पावन तो एक ही है, बाप ही गुप्त ज्ञान देते हैं जिससे सभी की सदगति हो जाती है। बाकी हनुमान व गणेश आदि जैसे कोई होते ही नहीं। अब है ही नहीं, उसकी चालीसा चलेगी। इन सभी को कहा जाता है पुजारी, इन सब को क्या कहा जाता है? पुजारी, भगत। अच्छा, रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप व दादा का याद, प्यार और गुड नाइट। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप की नमस्ते। तो हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सात। नंबर एक, सजाओं से बचने के लिए देह के सर्व संबंधों से बुद्धि योग निकाल, एक बाप से बुद्धि योग जोड़ना है। अंत समय में बाप के सिवाय और कोई याद ना आए, निरहंकारी बन साइलेंस में रहे, कांटों को फूल बनाने की मेहनत करनी है। श्रीमत पर अंधों की लाठी बनना है, पावन बन पावन बनाना है। वरदान, समर्थ संकल्पों द्वारा जमा का खाता बढ़ाने वाले होली हंस भव, होली हंस भव। जैसे हंस कंकड़ और रत्नों को अलग करते हैं, आप ऐसे होली हंस अर्थात समर्थ और व्यर्थ को परखने वाले, जैसे हंस कभी कंकड़ को चुग नहीं सकते, अलग करके रख देते हैं, व्यर्थ छोड़ देते हैं, ग्रहण नहीं करते हैं, ऐसे आप होली हंस व्यर्थ को छोड़ समर्थ संकल्पों को धारण करते हो। व्यर्थ तो बहुत समय हो जाता है, व्यर्थ तो बहुत समय सुनाया, बोला, किया, लेकिन उसके परिणाम में सब कुछ गंवाया। अब गंवाने वाले नहीं, जमा का बैंक का खाता, जमा करने वाला खाता खोलो ना, फिर आप उसमें जमा करते रहो। बाबा के पास खाता खोलोगे तो फिर जमा कर सको। स्लोगन है, स्वयं को ईश्वरीय मर्यादाओं के कंगन, स्वयं को ईश्वरीय मर्यादाओं के कंगन में बांध लो तो सर्व बंधन समाप्त हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम।